आज सद्गुरुवार का दिन है, तो हम सभी प्यारे बाबा को भी भोग लगाएंगे और साथ साथ हम सबकी अति प्रिय अति आदरणीय कमलेश दीदी जी, जो 22 नवंबर को अव्यक्त हुए, आपने बाप दादा की गोद ली। आप उड़ीसा में कटक सब जोन के डायरेक्टर थे और साकार बाबा के समय से ही आप बाबा की सेवाओं में आ चुके थे और 73 से आपने उड़ीसा में सेवाओं की फाउंडेशन डाली और फिर आपके द्वारा ही जो हैंड्स निकले उन्होंने ही उड़ीसा की सेवाओं के इस वृक्ष का विस्तार किया और आज जो भी उड़ीसा में हम देखते हैं सेवाएं फल फूल रही हैं, वो कहीं ना कहीं आप ही उसके आधार स्तंभ रहे। तो ऐसी महान आत्मा को आज हम सभी भोग भी स्वीकार कराएंगे और उनके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करेंगे। आपका जीवन ऐसे था जैसे बाबा को पहचानते ही कोई झाटकू होकर बलि चढ़ जाता है। इतना बाबा से अटूट प्यार, अटूट निश्चय आपका था और इसी के आधार पर आप सदा ही विजयी रहे। तो देवी जी के साथ के कुछ अनुभव हम अपने वरिष्ठ भाई बहनों से भी सुनेंगे। तो हमारे मध्य आदरणीय करुणा भाई जी हैं, आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल हैं और सभी मीडिया सेवाओं के आप हेड हैं और यज्ञ के बाबा के वरिष्ठ अनन्य रतन हैं। तो कमलेश दीदी के साथ के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे और उसके बाद सुलोचना बहन जी से हम सुनेंगे।
ओम शांति। मुझे अत्यंत हर्ष है कि हम सब के बीच कमलेश दीदी रही और बाबा के अनन्य होके रही और उनका त्याग का वर्णन तो जितना करे उतना कम है, क्योंकि आज के जमाने में हम लोगों को कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ब्रेन वॉश करते हैं, तो ये शब्द हम बच्चों के लिए, जो बाबा के अनन्य बच्चे जो आप सभी बैठे हैं, जो सारे देश में सेवा करते हैं, तभी तो संस्था बढ़ रहा है। परंतु आपको ये कह दे कि आप परमात्मा का परिचय नहीं दे रहे हैं तो आप ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा बोलते हैं। परंतु हमारी कमलेश दीदी की जो त्याग और तपस्या का जो वर्णन है वो बहुत अनोखा है, क्योंकि वो समय ऐसा था 1952 में जन्म लिए हुए और कोलकाता में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो आप जानते हैं कोलकाता में कौन निमित्त बने, ब्रह्मा बाबा भी कलकत्ता में ही बिजनेस करते थे और ड्रामानुसार हमारी निर्मल शांता दादी भी कोलकाता में ही सेवा की है। ये भी एक ब्रिजेंद्र दादी तो जो बहू है वो बॉम्बे में सेवा की है, परंतु निर्मल शांता दादी अंत तक कोलकाता में सेवा दी। तो जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे जो अमर पंजाब के दादी चंद्रमणि को पंजाब की शेरनी कहते हैं, उनके साथ रहे हुए कुमारियों को जैसे पवित्रता के लिए या यज्ञ के नियमों के पालना में नंबर वन कहते हैं, तो यज्ञ में पूछते हैं कि भाई चंद्रमणि दादी जी के है ये टीचर, ऐसा कहते थे। तो उन लोगों का जो नियम है बहुत स्ट्रिक्ट थे, जो नियम टीचर्स ट्रेनिंग में जो सुनाते हैं तो वो स्ट्रिक्टली अपने लाइफ में वो लोग इस बात को मानते थे। तो वैसे ही जैसे निर्मल शांता दादी जी के त्याग तपस्या को जो लोग जानते हैं, तो जिनके नाम से एक मशहूर गीत भी है, तो निर्मल शांता दादी के लिए कहते थे आप इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। तो ब्रह्मा बाबा का एक नंबर वन फॉलोअर जिसको कहते हैं, फॉलो फादर जिसको कहते हैं, तो वो नंबर वन में थी। तो उन द्वारा हमारे कमलेश दीदी को ज्ञान प्राप्त हुआ, कलकत्ता से हुआ। परंतु त्याग और तपस्या के बारे में कहे तो कमलेश दीदी का एक विशेष है। तो आप कहेंगे ऐसी क्या विशेष है, तो जो आज कहते हैं थोड़ा कुछ हो जाता है घर में पति पत्नी के विचारों में, तो कहते हैं भी ये ब्रेन वॉश करते हैं। त्याग और तपस्या का इस समय पर लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि समय के परिवर्तन भी इतना हो चुका है कि कलयुग भी अपनी तीनों अवस्थाओं में पास हो चुका है। जैसे अति हो चुका है तो अर्थात इसको कहा जाता है तमो प्रदान का समय चल रहा है। तो आप कहेंगे कि कमलेश दीदी ऐसी कौन सी इसकी त्याग है और तपस्या थी, क्योंकि कईयों को मालूम नहीं है, क्योंकि सेवा में भी कमलेश दीदी डायरेक्टर बन के थी, ओडिशा के जोन के डायरेक्टर बनी रही, इतना हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंची है, पर उनका त्याग भी कोई कम नहीं है। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो शादी से थोड़ा सा विचारों में भिन्नता होती है, तो अभी भी मैं आजकल सुनता हूं, आते हैं तो भाई पति से हम अलग रहते हैं, पति अपने खुशी है से रहते हैं, परंतु मैं अलग रहती हूँ या बच्चों के साथ रहती हूँ ये बोलते हैं। परंतु हमारे कमलेश दीदी जी के इसमें सहयोगी तो थे, परंतु बच्चों से भी अलग रही। पूर्ण रूप से जैसे कुमारी कैसे रहते हैं, तो इस प्रकार इन्होंने अपना तपस्वी जीवन को बनाया, जो आज भी ये एक मिसाल है। क्योंकि पति से तो फिर भी अलग होते हैं, बच्चों से माँ अलग होना ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है। तो कमलेश दीदी के लिए कभी ये नहीं किसी को ऐसा लगता था कि भाई इन्होंने इतनी बड़ी त्याग किए हैं, और दूसरी बात मैं उनके जीवन में ये देखा कि कलकत्ता से ओडिशा में आना, जो भाषा अलग, एजुकेशन अलग है, संस्कृति अलग है, वेस्ट बंगाल से तो ओडिशा का अच्छा है ज्यादा, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा नॉर्थ में भक्ति प्रधान स्टेट है तो वो ओडिशा है। लास्ट तक भी अभी तक वहां राजा का ही प्रभाव रहा, और ओडिशा का मंदिर तो आप जानते ही है, तो बाबा भी वर्णन करता है तो दो ही मंदिर का ही करते हैं, एक नाथ द्वारा है एक ओडिशा का है। तो भक्ति प्रधान का है जगह, और ऐसे स्थान पर आपने जो सेवा दी, और संख्या भी हम देखते हैं और सेवा में भी हम देखते हैं, आज ओडिशा नंबर वन में है। चाहे वो मधुबन हो, चाहे अन्य स्टेट्स में हो, मैं जहां भी गया हूं कोई न कोई ओडिशा के टीचर्स वहां सेवा करते हुए मैंने देखा है। और कमलेश दीदी के बारे में भी वो अपने अनुभव सुनाते हैं। जब भी मधुबन आती है हम लोगों से मिलना जरूर होता था, क्योंकि मैं निर्वर भाई के साथ रहता था, तो मोस्टली हम लोग लास्ट तक भी, जब लास्ट में भी आई थी उनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी थोड़ा अहमदाबाद आदि का वो भी पार्ट रहा थोड़ा, पर मिले बिना कभी नहीं गई है। यहां तक व्हील चेयर में यहां होती थी, और मुझे याद है लास्ट में मैं और निर्भर भाई थे तो वहां आई थी, और निर्भर भाई बिना खिलाए कभी बेचती नहीं थी। तो बहुत ही समीप और बहुत ही एक प्यारा स्वरूप था। तो इस प्रकार यज्ञ का भी अति समीप थी, ऑनेस्ट थी, और किस प्रकार से ओडिशा में सबका दिल जीत करके जो सेवा किया वो हमारे बहुत भाई बहन हैं यहाँ बैठे हैं, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो आप सोचते होंगे करुणा भाई को इतना सारा कैसे मालूम है। तो हम लोग यज्ञ में रहते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा के बच्चे, कई बार हमको ऐसा लगता है हम मधुबन में रहने वाले हैं, नहीं, हमारे से भी अच्छे बाबा के सच्चे दिल के सच्चे बच्चे, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे बाहर भी रहते हैं। तो उसमें हमारी कमलेश दीदी नंबर वन रही, तो हर प्रकार की सेवा। तो लास्ट में मैं उड़ीसा गया था तो तभी भी मैं उनसे मिल के आया था, तो वो भी दिन याद आती है। और आज फिर से हम सभी उनके पास, अभी भोग लगेगा क्योंकि हमसे आगे है, इसका सैंपल बाबा ने करके दिखाया जो हमसे पहले। वैसे भी कहते हैं हम लोग जैसे अमीरचंद भाई थे, सब थे, तो अमीरचंद भाई का तो हम ये एग्जाम्पल देते हैं कि भाई रात को हम लोग साथ में खाना खाए थे यहाँ, तो उसके बाद वो आए नहीं हमारे पास। तो यही कहते थे बाबा को जो अच्छे लगते हैं उनको पहले बुला लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई जो यहाँ है वो अच्छे नहीं है, परंतु कहने में ऐसा होता है कि जो अच्छे लगते हैं बाबा उनको पहले बुलाते हैं। तो ऐसे हमारे कमलेश दीदी आज हमसे पहले बाबा के पास है। और बाबा कहते थे कि कुछ ऐसे आत्माएं हैं यहां, भले तबीयत का कुछ नीचे ऊपर होता है तो हमको लगता है कि भाई देखो चल नहीं पा रही है, व्हीलचेयर में है, भोजन भी प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं कभी कभी, कोई भी ऐसी होती है, पर वो खुश रहते हुए हमने देखा है। कभी इनके फेस में भाई दुखी है या नाराज है ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा है। तो जिनको बाबा कहते हैं कि प्रकाशमणि दादी जी का भी एग्जाम्पल बाबा ने दिया था कि कर्मातीत होके जाना ही लक्ष्य रहता है, बाबा मिले ये है, एक अपनी प्राप्ति है। हर एक आत्मा हम लोग खुश रहते हैं कि भाई हमको भगवान मिला है, बाबा मिला है, पर एक और परीक्षा भी हम सबके सामने आता है कि बाबा तो मिले, ज्ञान मिले, बहुत सेवा की, परंतु कर्मातीत बन के गए। मम्मा को भी देखा हमने, बाबा को भी देखा, तो मम्मा की बात मुझे सदा ही याद रहता है। तो लास्ट में 3 मास मम्मा हमारे साथ रही बैंगलोर में, तो एक दिन मम्मा से पूछा मैंने, मम्मा तो आप सारा दिन यहां रहते हैं तो क्या करते हैं? क्योंकि उन दिनों में सुबह क्लास होता था, शाम को कभी पब्लिक प्रोग्राम हम रखते हैं तो बाहर से नए लोग आते थे, तो सारा दिन मम्मा आप क्या करते थे? तो मम्मा का जो उत्तर है मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मम्मा ने कहा कि मैं यहां कहां रहती हूं? मैंने कहा मम्मा हम तो आपको देख रहे हैं, आप तो यहाँ ही है। पर मम्मा ने कहा नहीं, जब सेवा है तो तब मैं यहाँ रहती हूँ, बाकी समय पर मैं बाबा के साथ रहती हूँ। तो कर्मातीत बनने वालों की पुरुषार्थ क्या है वो मैं आपको बता रहा था। तो इसी प्रकार जो अंत तक कैसी भी स्थिति आए शरीर का, तो हम अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, क्योंकि हिसाब किताब के साथ तो ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो बाबा ने अनेक बार कहा है कि कैसी भी होगी, भले अभी अभी आए हुए आत्माएं भी होंगे, हरेक को अपना हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है। तो इसी प्रकार एक सैंपल हमारी कमलेश दीदी भी है कि उन्होंने भी खुशी खुशी से अपने हिसाब किताब को चुकतू करते हुए उन्होंने देह त्याग किया और गया। तो हम सबके लिए एक सैंपल और एग्जाम्पल बन करके गए, तो आज के दिन हम सभी उनको याद करेंगे, उनको भोग भी लगा रहे हैं, और हमारे साथी को याद करने का एक बहुत ही अच्छा दिन है। आज मधुबन में भोग लगा रहे हैं, वो मधुबन की थी, मधुबन की है, मधुबन की ही रहेंगी, और खुशी की बात यह है वो हम सबके अति प्यारे और अति मीठी थी। तो आज उनके भोग के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, आप सबको भी बिल्कुल खुशी खुशी से हम हमारे दीदी से मिल लेंगे, ऐसा चाहता हूँ। ओम शांति।
जैसे भाई साहब बता रहे थे कि जैसा भी उनका हिसाब किताब था, लेकिन हमने भी ये देखा कि बीमारी का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं था। तो जिसको बाबा कर्मातीत स्थिति कहता है कि साक्षी होकर के जैसे कर्मेंद्रियों से अपना हिसाब किताब आत्मा चुकतू करती है, ऐसी अवस्था उनकी थी। और सचमुच वो सभी के लिए एक एग्जाम्पल थे, प्रेरणा थे। मैं जितना भी कमलेश दीदी के संपर्क में आई, मैंने महसूस किया कि उनका स्नेह मातृवत स्नेह था, बिल्कुल माँ की तरह प्यार और पालना करना, और बहुत बड़े दिल से, उदार दिल से उनका वो पालना का स्वरूप देखा। और मधुबन से तो बहुत प्यार, और खासकर दादी कॉटेज, दादी थे तो पहले आकर दादी से मिलना, और दादी नहीं तो मुनि दीदी से आकर के मिलना। जैसे बता रहे थे भाई साहब कि सभी से मिले बिना वो नहीं जाते थे, तो ये इनकी विशेषता थी कि मधुबन से भी अटूट प्यार था और अपने ईश्वरीय परिवार से भी उनका उतना ही प्यार था। तो अभी हमारे साथ सुलोचना बहन हैं, आप उनके साथ, कमलेश बहन जी के साथ 48 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं कटक सब जोन में दे रही हैं, और वर्तमान में एज ए एडिशनल डायरेक्टर आप थे उनके साथ। तो आप और भी वहाँ जो रूरल विंग है उसके जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, और जो ज्ञान दर्पण उड़ीसा की मैगजीन निकलती है उसकी भी आप चीफ एडिटर हैं। तो आप भी अपने अनुभव कमलेश दीदी जी के साथ, सेवाओं के अनुभव हमारे साथ संक्षिप्त में साझा करेंगे।
ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा के सभी अनन्य रतन मंच पर आदरणीय करुणा भाई जी, सविता बहन जी और परम आदरणीय मुनि दीदी जी, वरिष्ठ भाई और बहने, अनुभव तो सागर के समान है, लेकिन उसको गागर में समाकर कितना सुना सकूं। 1973 में ओडिशा में ये ज्ञान की बीज आदरणीय कमलेश दीदी जी निमित्त बन करके शुरू किया। मैं 1977 में ज्ञान में आई। मैं उस समय पढ़ रही थी कॉलेज में, छत पर खड़े थे बहन जी और निरुपमा बहन, दोनों रिक्शा पर आ रहे थे, सफेद सफेद साड़ी। तो हम लोग पता कौन से फरिश्ता है या पादरी है, कौन आ रहे हैं। तो हॉस्टल में निरुपमा बहन जी को छोड़ करके दीदी जी गए। उसके बाद कोर्स किया और हॉस्टल में हम दो बहनें ज्ञान में निकले और बाबा से मिलने गए थे। बड़ी दीदी जी वहाँ थे, बोले तुम सामने बैठना बाबा को अनुभव करने के लिए। मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिले। उस समय मैंने वायदा किया बाबा से, बाबा ये जो बहनें जैसे पार्टी लेकर के आते हैं ना, हम भी अगले बार पार्टी लेकर के आएंगे। ये मैंने दृढ़ संकल्प किया। एग्जाम था, एग्जाम फिर जितना दिन हम माउंट आबू में आए उतना दिन हमारा एग्जाम आगे गया। तो आराम से आए। फिर समर वेकेशन में हम गए थे कटक में, पुरी में पढ़ रहे थे, कटक में गए। वहाँ दीदी जी के हिंदी हम इतना नहीं समझते थे, हिंदी में कुछ दीदी बोल देंगे तो हम और कुछ कर देंगे ऐसा था। लेकिन दीदी जी का जो प्यार और जो पालना है, निरुपमा बहन जी से तो ज्ञान सुन करके दिमाग हिल गया था, लेकिन दीदी जी के प्यार पालना से मेरा दिल बदल गया, एकदम दिलाराम बाप की तरफ चला गया। तो वहाँ मुझे पता पड़ गया समर्पण होने में क्या क्या करना है, सब पता पड़ा। घर में गए, घर से दीदी जी को लेटर लिख दिया, मेरा तो दिल है पढ़ाई छोड़ करके आपके पास आ जाऊं, लेकिन आपका जो मर्यादा नियम है वो तो नहीं हम कर सकते हैं। सब मेरे आंटी बन जाएंगे और कुछ मुझे खर्चा भी नहीं देंगे। तो दीदी जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा, उड़िया लिपि उड़िया था, हिंदी भाषा थी, और उसमें यही था आप आ जाओ, आप बाबा के घर में आ जाओ, आप देवी हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, आपका स्वयं भगवान वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं है। मैंने उसमें लिखा था साफ शब्द में, मेरा खाना पीना रहना ये सब आप जिम्मेवारी लेंगे तो मैं आ जाऊंगे। तो उन्होंने एक लाइन उसमें से सुनाती हूँ, बोला एक रोटी मुझे मिले आधा रोटी तुम्हारा, ये दीदी ने लिख कर के दिया था। फिर हम बाबा के घर में आ गए। आने के बाद छुप करके आ गए, आने से पहले मैं एडमिशन करने के लिए बीएससी एडमिशन करने के लिए कॉलेज गई। सब मेरे सहेली सब एडमिशन ले रहे, मेरे को बोला, मैंने बोला आप सब करो मैं पीछे। उसके बीच में मैंने फोन किया, दीदी ने बोला अरे क्या करोगे तुम कौरव गवर्नमेंट के पाठ पढ़ करके, क्या करना है तुम्हें, तुम आ जाओ पांडव गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी में। तो इतने शब्द में मैं फिर पूरी में सेंटर निरुपमा बहन के पास गई। निरुपमा बहन बोले तुम अभी कटक चले जाओ, मेरे पास नहीं रहो, तुम्हारे भाई ये सब आएंगे यहाँ हंगामा करेंगे। तो मैं कटक चली गई, वहाँ आराम से रहे। कुछ दिन के बाद दीदी ने कहा तुम पत्र लिखो घर में। मैंने कहा ये क्या है, आपने मेरे को बुलाया मैं आई, फिर आप कह रहे पत्र लिखो। मैं बाबा के कमरे में बैठी, पत्र लिखा, उसमें लिखा मैं गॉडली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली हूँ, मेरा ऑनर्स है डिवाइन वर्च्यूज, पास है कुकिंग, क्यों मैं देखती थी खाना पीना बनाना ये सब होता है। ये लिख करके चिट्ठी दे दिया, वो तो फिर उनको पता पड़ा, बहुत सारा हंगामा हुई, वो नहीं सुना रही हूँ। सिर्फ दीदी जी का जो हम, दीदी जी एक बार हमको लेकर के गए बालेश्वर, और कानन बहन जी थे स्टूडेंट, सब हाथ उठाया योग शिविर के लिए, कौन करेगा? तो दीदी जी मुझे छोड़ के चले गए। मैं ना उस समय योग शिविर जानती हूँ, कुछ जानती हूँ, फिर भी बाबा को याद किया, फोन से बात करके योग शिविर कराया, सिखाया दीदी ने। फिर उसके बाद दीदी ने कहा तुम मुरली पढ़ो। मैंने मुरली पढ़ा, बोला ठीक है तुमको बारीपदा जाना है, लेकिन क्या करना, जो जो सब तुम नहीं समझ पाती हो, क्लास में जाने से पहले वहाँ जो पुराना भाई बहने हैं उनसे पूछ करके स्टेज में जा करके क्लास मुरली सुनाना। तब तो ये हमने मुरली भी पढ़ना, क्लास कराना सीख गए। ऐसे करके हर बात दीदी जी हम लोग को सिखाते थे, आयरन कैसे करना है, झाड़ू कैसे, पोछा कैसे, सब बात उन्होंने सिखाया। ज्यादातर पवित्रता के लिए दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, पवित्रता के बाद परखने की शक्ति बहुत है। दीदी जी का ये यज्ञ प्राण था, जो भी कुछ होगा यज्ञ के लिए, पहले यज्ञ। तो अभी भी आपको सुना रहे हो, अगर उनकी बीमारी हो तो भी निर्भर भाई जी से पूछेंगे। निर्भर भाई जी एक बार उनका गॉल ब्लैडर स्टोन था, भाई साहब ने बोला आ जाओ यहाँ, तो तुरंत सब राजी हो गए। मैंने कहा मैं एक दिन के बाद जाऊंगी, फिर उन्होंने कहा मैं भी एक दिन के बाद जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब एक दिन के बाद जा सकती हूँ, आज क्यों नहीं जा सकती हूँ। ऐसे करके दीदी जी का जो भी इलाज है अहमदाबाद में होता था, और बाबा के घर के डायरेक्शन के अनुसार। तो इसी प्रकार दीदी जी हमारे पास, दीदी जी यहाँ पर आए थे, दादी जी को निमंत्रण दिया। निमंत्रण क्या, उससे पहले मकान भुवनेश्वर का बन गया, बारीपदा का म्यूजियम उद्घाटन करना था, जमीन खरीद करना। दीदी जी कहते थे विनाश हो जाएगा, ये क्या करना है खरीद करके, सेवा करो। लेकिन रमेश भाई जी समझाने के बाद जमीन खरीदा। भूमि पूजन में दादी गई थी, दादी जी, बड़ी दादी जी। फिर जब एक साल के बाद मकान बन गया, दादी जी को फिर दीदी ने कहा, दादी जी ने कहा देखो कमलेश, दादी एक बार सौदा करती है, दो बार कहीं नहीं करती है, ये बोला। लेकिन दीदी जी का इतना स्नेह था, दादी जी उद्घाटन में भी आए, और अपने स्पीच में दादी जी ने ये कहा देखो कमलेश, तू इतनी ममतामयी हो, तेरे पास मैं 6-7 बार आ गई, लेकिन राजस्थान में बगल में ऐसे सेंटर में वहाँ नहीं गई हूँ। तो इसी प्रकार दीदी जी की प्यार पालना, खुले दिल, कोई आएंगे वो पूछेंगे नहीं, उनको पहले टोली खिलाएंगे, खाने का टाइम हुआ होगा तो कहेंगे खाना खा लो, और किसी को कहेंगे नहीं खाना खाएंगे, ये नहीं पूछेंगे खाना खा लो। तो इतना उनका प्यार, मदरली हार्ट, जो ये आत्मा को इतना खींच करके रखा, हम लौकिक परिवार को पूरा भूल गए, अलौकिक ही अलौकिक है। इसी प्रकार दीदी जी यहाँ माउंट आबू में आए थे, यहाँ से गए, उसके बाद उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ, वो तो हमें पता नहीं था। हम जब डॉक्टर को सुनाया तो डॉक्टर ने कहा क्या क्या हुआ, मैंने सब बात सुना दिया, लेकिन एक बात मैं उसको साधारण समझती थी। दीदी का ऐसे थोड़ा लार निकला था, दीदी बोले ये क्या है, मैंने कहा आप बच्चे हो गए ना, बच्चों के मुंह से क्या है, कभी लार निकल आता है, कभी कुछ निकल आता है, इसी प्रकार आप बच्चे हो, ये बात कह करके मैं हल्के हो गई थी। जब डॉक्टर को सब सुना दिया, उसके बाद कैसे भी मुझे बाबा ने टच कराया, मैंने सुनाया, तभी उन्होंने कहा ये ब्रेन स्ट्रोक है। फिर इलाज हुआ, 14 दिन उन्होंने रहा और 2 दिन वेंटिलेटर में रहे थे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया था। लेकिन वहाँ पर सर्विस बहुत अच्छा, जो भी नर्स थे जो भी स्टाफ थे वो कहते थे यहाँ जैसा हमको शक्ति मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। इसी प्रकार जाने का दिन सुना देती हूँ। दीदी तो ठीक हो करके आ गए थे, जिस दिन जाएंगे 10-12 दिन पहले मेरे को बोला, देखो मैं तो 7-8 दिन के मेहमान हूँ। हम कहते दीदी ऐसी बात क्यों आप बोलते हो। जिस दिन नवंबर 22 तारीख को अमृत वेले योग में बैठे थे, पक्का अमृत वेला करेंगे, शाम का 6:30 बज जाएगा तो वो रहेंगे नहीं, चलो चलो योग करेंगे 6:30 से 7:30। तो मैं योग से आ रही थी, दीदी बोले सुनो मुझे आज जाना है, ये मेरे को बताया। मैंने कहा क्या आप बोल रहे हैं, कुछ बोला नहीं, मुझे आज जाना है। तो ये उस दिन भी मैं क्लास में गई, क्लास से आने के बाद दीदी ने मेरे को ऐसे ऐसे प्यार भी किया। उसके बाद मैं नाश्ता भी उन्होंने खाया, हम भी उनको थोड़ा, वही जो रोटी आधा था ना, इसी प्रकार मेरा हाथ में 1/4 पराठा था। मैंने कहा दीदी इसको भी खा लो, दीदी ने खाया और फ्रेश होकर के बैठे थे। हम थोड़ा नीचे गए तब किसने जाके बोला आइए आइए दीदी जी का कुछ हो रहा है। हम दौड़ के आए, तभी तो दीदी जो बहने थे, तब देखा आत्मा पंछी उड़ गए हैं। तो दीदी ने 3 बार, जो बहने थे 3 बार बोले बाबा मुझे ले जाओ, बाबा मुझे ले चलो, बाबा मुझे ले जाओ, ये 3 बार बोल करके बस बाबा के गोद में समा गए। और दीदी जी का जो दरिया दिल है उसको मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। दीदी जी ने मेरे को जो सिखाया जो किया सब, आज भी मुझे मुनि दीदी जी से वो चीज मिल रहा है। दीदी जी मेरे से प्यार से क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने कहा दीदी जी मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर दीदी जी का भोग लगेगा। तो दीदी जी ने सब बात हमको समझाया, इसी प्रकार के दीदी जी भी मेरे को अभी भी बोले देखो तुम जब चाहो 8 दिन यहाँ आकर के रहो, 15 दिन रहो अच्छी तरह से, मन भी स्वस्थ तन भी स्वस्थ, यहाँ आओ। तो इसी प्रकार दीदी जी से भी मुझे अभी ये प्यार मिल रहा है। हम सब बहने सब आए हैं यहाँ पर, तो आज भोग लग रहा है और हमें अभी महसूस नहीं हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है दीदी हमारे साथ है, साथ रहेंगे और हम बाबा की सेवा उनके जो है वो सब करेंगे। आज भोग लग रहा है, इसलिए मैं मुनि दीदी जी को किन शब्द में धन्यवाद करूं। और ओम शांति, टाइम हो गया है, दीदी जी सुनाएंगे।
हमारी जो भी दादियां दीदियां व्यक्त हुए हैं, तो भले ही वो अभी साकार रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में तो बाबा अभी भी उनसे सेवा करा रहे हैं। तो आगे भी वो अपने कटक सब जोन में जो सुलोचना बहन अभी निमित्त हैं और उनकी साथी बहनें, उनको सूक्ष्म में जरूर गाइड करते ही रहेंगे और पूरे बेहद की सेवाओं में भी वो निमित्त रहेंगे। सेवाओं का बहुत उमंग देखा था हमने कमलेश दीदी में, और कई विशिष्ट सेवाएं कटक सब जोन से हुई, जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कटक सब जोन से ही बाबा के संपर्क में आई, उनको ज्ञान मिला और आज वो देश के शीर्ष पद पर हैं और इतनी बाबा की सेवा के भी निमित्त हैं। इसके अलावा जो भी म्यूजियम्स में मॉडल बनते हैं वो भी अपने कटक सब जोन के नथमल भाई विशेष रूप से निमित्त रहे भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर वो सेवाएं करने के। तो आगे भी ये सेवाएं और बढ़ती रहेंगी उनके सूक्ष्म प्रभाव से। और हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी, जिनसे भी कमलेश दीदी का बहुत बहुत स्नेह था, हम देखते थे जब भी आते थे वो पहले आकर के कॉटेज में अपनी हाजिरी देते थे उनके पास, और कलकत्ता से ही आप भी ज्ञान में आए, तो आपके भी विशेष अनुभव हैं उनके साथ जो हम सुनेंगे, उनके उद्गार। आदरणीय मुन्नी दीदी जी,
ओम शांति। आज हम सभी कमलेश दीदी जी, जो उड़ीसा में पूरे उड़ीसा की पुरानी सबसे दीदी इंचार्ज रही, जोन इंचार्ज जिसको कहें, साथ में कटक की भी जितने भी उनके सेवा केंद्र है उनकी भी वो जोन इंचार्ज रही। दीदी जी कहाँ भी रही, कटक में पहले कहीं और भी, लेकिन उनका मन और तन सदा मधुबन में प्यारे बाबा के पास ही होता है, होता रहा। जब दीदी जी मधुबन आती थी तो हमेशा कहती थी, चलो इस बार तो आ गई हूं मैं, फिर अगली बार क्या होगा, आ पाऊंगी या नहीं। माना वैराग्य वृत्ति में रहती थी, अपने प्रति यही सोचती थी, जो हो जाए सो ठीक है। लेकिन दीदी अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह से सालों साल से, साल में चार बार भी यहाँ आती थी, कभी भी उन्होंने शिलोचना को अकेले आने नहीं दिया। हर समय यही कहती थी, मैं चलूंगी, मुझे जाना है। तो बाबा से, दादी दीदियों से, हम सब से, बाबा के घर से बहुत ही लगन रही, और हर बात में उनको सदा यज्ञ याद रहता था। कुछ भी हो, मुझे अपना भाग्य बनाना है, और बाबा के बेहद यज्ञ में बनाना है। इतने उच्च और महान उनके विचार थे। तो दीदी को उपराम वृत्ति भी थी, लेकिन साथ में संगम छोड़ने का मन भी नहीं था। संगम पर ही हमको जीना है, संगम सर्व युगों में इतना महान युग है। ब्राह्मण परिवार का आपस में इतना सुंदर मिलन है, तो कोई भी संगम छोड़ना नहीं चाहता है। कैसी भी स्थिति हो, लेकिन बाबा याद रहेगा तो संगम पर ही रहना चाहिए।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, विकराल विनाश खड़ा आगे। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है।
शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है।
शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
ओम शांति। कमलेश बहन जी, त्याग मुहूर्त, तपस्वी मुहूर्त, अथक सेवाधारी थी, थकना तो वो जानती नहीं थी, कैसे भी करके पहुंच जाती थी। कल सुलोचना बहन आई तो मुझे ऐसे लगा कमलेश दीदी भी इस दरवाजे से आई है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे दरवाजे से आती थी कॉटेज में। तो मुझे यही भास, ये भी रखना है, तो मुझे यही भासना आई दीदी भी आई है। तो दीदी का बहुत प्रेम रहा हर प्रकार से, और बहुत सुखी संगम का समय पूरा करके बाबा के पास गई। अब हमारी खास आज ये लोग कटक वाली बहनें भोग लगाने आई है कमलेश दीदी को, तो हम सब मिलके अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, भोग लगा रहे हैं। आप सबके लिए भी भोग और ब्रह्मा भोजन है, हर व्यक्ति भोग और ब्रह्मा भोजन खा के जाएगा, और साथ में बहुत अच्छी तरह से सजा के थाली भेजी है कमलेश दीदी को, ताकि वो तृप्त होके बाबा के यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खाए और टोलियां भी उनके मन पसंद 21 प्रकार की टोली उनको भेजी है, सब वैरायटी फ्रूट्स भी है। आपने सुना 21 प्रकार की टोली वैरायटी फ्रूट्स खाने की थाली सब सजा के भेजी है, उनको दिखाना, बाबा को दिखाना और खिलाना। तो अभी हम सभी मिलके भोग लगाएंगे और घर वालों की उनके उपलक्ष में सौगात भी है, जो हर जगह अलग अलग बट जाएगी। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन। रुक्मणी दीदी भी भोग नहीं, भोग शशि दीदी को लगाना है, कमलेश बहन जी का, और रुक्मणी दीदी को भी भोग लगाना है, बाबा से संदेश लाना है। जो पर्सनल 300 लोगों ने भोग लगवाया है उनको बैठ के सुनाएंगी और बाबा का प्रसाद देगी। शशि दीदी केवल कमलेश दीदी का भोग लगाएगी और सभा में संदेश सुनाएगी। आज सवेरे भोग नहीं रखा ना, इस समय रखा। ब्रह्मा भोजन भी अभी बना है। ओम शांति।
लो माइक लो। तो अभी हम सब चलेंगे बाबा के पास और प्यारे बाबा को और हमारी आदरणीय कमलेश दीदी जी को हम सभी भोग स्वीकार कराएंगे और फिर संदेश भी सुनेंगे और उसके बाद सभी ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार करेंगे, जैसे आदरणीय मुन्नी दीदी जी ने बताया। Thank you. सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, आप सभी संदेश सुनकर ही जाएंगे।
ओम शांति। आज विशेष हम सबकी अति प्यारी कमलेश दीदी जी के निमित्त मधुबन में निमित्त मुन्नी बहन, वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहने, कटक फुलवाड़ी के विशेष सुलोचना बहन, नथमल भाई और कटक सब जोन की, कटक सेंटर की सभी सेवा साथी, कटक सब जोन के सभी भाई बहनों की तरफ से कमलेश दीदी के निमित्त याद प्यार लेकर वतन में पहुंची तो वहां जाते क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट कमरा था। उस ट्रांसपेरेंट कमरे के अंदर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे और हमारी कमलेश दीदी बहुत ही लगन से बाबा के साथ मिलन मना रही थी। लेकिन एक चीज क्या देखा कि कुछ पत्र पड़े हुए थे और उन पत्रों से कुछ न कुछ शब्दों को लेकर के और वो उठा करके अलग कर रही थी और ऐसा सुंदर था जैसे जैसे वो शब्द थे वो हीरे मोती जैसे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए और बाबा ने मुझे कहा बच्ची क्या देख रही हो। मैंने कहा बाबा सबकी लाडली और ये आपकी प्यारी बच्ची तो आपके पास पहुंच गई है, अभी भी वतन में क्या कर रही है। बाबा ने कहा बच्ची का निश्चय बाप से प्यार त्याग तपस्या ने बाबा के दिल को ऐसा बच्ची के प्रति अपनी तरफ आकर्षित किया और बच्ची बाप को हर समय दिल के उद्गार जो प्रकट करती कभी पत्र के द्वारा कभी योग के द्वारा, तो बाबा इस बच्ची को वरदानों से भरपूर करते थे। तो जैसे बाबा ने कहा वो सारे के सारे वरदान जो थे हीरे मोती जैसे चमकते हुए उनसे उनका श्रृंगार होता जा रहा था। बाबा ने कहा बच्ची का प्योर लव बाबा के साथ होने के कारण बच्ची ने अनेक वरदान प्राप्त किए हैं और वरदानों से पली है और वरदानों से ही बढ़ती रही है और वरदानों से बच्ची ने ऐसी सेवाएं की हैं अनेकों का भाग्य बनाया है। बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा ये तो ऐसे स्थान पर गई। बाबा ने कहा बच्ची को बाप ने ऐसे स्थान पर भेजा जिसका नाम उड़ीसा अर्थात उड़ने वाला स्थान, और बच्ची भी वहाँ जाकर के ऐसा उड़ी कि कोई भी कोना चाहे सागर की तरफ है चाहे कठोर जमीन है चाहे कोई भी ऐसा स्थान है उसको बच्ची ने नहीं छोड़ा, जगह जगह जाकर के शुभ वाइब्रेशन स्थूल सूक्ष्म सेवा के द्वारा बच्ची ने हर जगह हरियाली फैलाई। केवल इतना ही नहीं, साधारण से लेकर बड़े तक, राजनीतिक से लेकर धार्मिक तक इस बच्ची ने सबको बाबा का संदेश दिया। मैंने कहा बाबा तो ये तो बहुत सेवा की है। बाबा ने कहा बच्ची ने मधुबन से ही इसको भेजा, बाप ने बच्ची को मधुबन से भेजा और बच्ची का इतना बड़ा भाग्य रहा जो सब महारथियों के साथ रह करके अनुभव करना साधारण जीवन, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन के द्वारा बच्ची ने अनेकों का भाग्य बनाया। तो फिर बाबा ने जैसे उनको इमर्ज किया और बाबा उसको दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि देते देते उसका पूरा श्रृंगार हो गया और फिर मैं क्या देखती हूँ उनके गले के अंदर एक बहुत सुंदर माला थी और वो हर माला के फूल के ऊपर कुछ न कुछ चमकता हुआ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा बाबा ये तो हर फूल पे कुछ लिखा है। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। मैं देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता था। बाबा ने कहा बच्ची ने जिसको प्यार से सेवा की है, अनेकों की भावनाओं को इतना महान बनाया है, आज बड़े से लेकर छोटे अपने मन के उद्गार बच्ची के प्रति प्रकट कर रहे हैं जो फूलों के रूप में उनकी विशेषताओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो उसको देख के बहुत न्यारी प्यारी थी, कहती बाबा की कमाल है, बाबा ने ही ये सब कुछ किया है। फिर बाबा ने उनको एक जैसे ना चारों तरफ ऐसा कहीं कुछ अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे थे, कहीं सागर दिखाई दिया, कहीं पहाड़ दिखाई दिए, कहीं पर बगीचा दिखाई दिया। बाबा ने कहा बच्ची को होता था कि यहाँ भी चले वहाँ भी चले तो सागर के किनारे, तो क्या पहाड़ों पर भी जाकर के बच्ची के सामने कितनी भी समस्या आए पहाड़ जैसी, बस बाबा को पकड़ करके उड़ता पंछी बन करके उड़ती रही और सबको उड़ाती रही। मैंने कहा कमलेश दीदी को, दीदी आप तो चली गई, सब आपको याद कर रहे हैं। कहती याद कर रहे हैं बाबा को? कहती बाबा इन सबको अपने दिल में बिठा लो। और बाबा को कहती बाबा ये सब अपने दिल में बाबा को बिठा ले तो बस, बाबा साथ है तो और क्या चाहिए, बस बाबा बाबा ही कर रही थी। फिर बाबा ने खास उनको कहा बच्ची देखो जिस फुलवाड़ी के अंदर रहकर सेवा की है वो अभी दृश्य दिखाता हूँ। तो उस सब जोन के सभी, एक तरफ तो मधुबन दिखाया मधुबन के निमित्त, और दूसरी तरफ उस सब जोन के जो भी निमित्त बहने हैं और निमित्त सेवा के जो विशेष भाई हैं, और फिर निमित्त टीचर्स बहने और क्लास के भाई बहने अलग अलग फुलवाड़ी के रूप में दिखाई दे रहे थे। और सबको देखती है और कहती है बाबा ये बहुत सुंदर है। तो वो फुलवाड़ी में से फूल जो थे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते थे, और वो फूल उठ करके ऐसे ही चारों तरफ से हिलते थे और उसकी खुशबू चारों तरफ ही फैलती जा रही थी। बाबा ने कहा बच्ची ने अनेक बार इस क्वालिटी बच्चे भी तैयार किए हैं, और ये सुंदर फुलवाड़ी देख करके बाबा को भी नाज है, और ये बच्चे जो हैं बाबा की विशेष सेवा में कई भिन्न भिन्न तरीके से कर रहे हैं। फिर एक तरफ वो ग्रुप दिखाया जो वीआईपीस ग्रुप था, और एक तरफ दिखाया वो साधारण से साधारण ग्रुप था, वो भी जैसे बाबा को देख करके इतना खुशी में। बाबा ने कहा बच्ची ने माइक भी तैयार किए और साधारण को विश्व के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। फिर मैंने कहा बाबा बच्ची ने तो बहुत कुछ किया है। फिर बाबा को बताया बच्चे याद कर रहे हैं। बाबा ने निमित्त को इमर्ज करते हुए कमलेश दीदी को कहा कुछ कहना तो कहो। कहती है बस बाबा के है ना, तो सबका हाथ पकड़ करके बाबा के हाथ में दिया, और हाथ में देते ही एक सुंदर जैसे बहुत सुंदर सा एक दृश्य, एक हाथ के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा बच्चों को यही कहना है यूनिटी में रहें, सब एक साथ हैं, बाबा का कार्य है, बाबा कराने वाले हैं, और सब के सब बाबा का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते रहें। फिर निमित्त को भी बाबा ने मर्ज किया, कहा कि साथ रह करके विशेष सुलोचना बहन, इनके सेवा साथी नथमल भाई और भी सेवा साथी, और जो अनेक सेवाओं में समर्पित हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, उनको इमर्ज करते हुए बाबा ने कहा बच्ची हल्की उड़ती और विशाल दिल वाली रही, जहाँ भी देखो बाप के समान दाता बन के ये भी करो ये भी करो। तो बच्ची को होता था कि अगले पल क्या होगा, अभी जो करने कर लो, तो जो इसका ये विशाल दिल का संस्कार था ये बच्ची के द्वारा अनेक सेवाएं करा के गया। तो बच्चों को भी दाता बन करके विशाल दिल और बाप को साथी बना करके सेवा करते रहना है। बाप साथ हैं और निमित कार्य करने वाले अनुभवी हैं, और भी अनुभव करते आगे बढ़ते जाएं। फिर बाबा ने खास कमलेश जी को भोग स्वीकार कराया। कहती बाबा सबको खिलाओ ना, उसकी एक नेचर थी, इसको खिलाओ इसको खिलाओ। बाबा ने कहा देखो तुम्हारे संकल्प से पहले बाबा ने बच्चों को पहले से दे दिया, तो जैसे देखो सबके हाथ में भोग की प्लेट थी और वो प्लेट को देख कर रहे थे और दृष्टि भी दे रहे थे और बहुत प्यार से स्वीकार कर रहे थे, तो बहुत खुश होती हैं। बस सदा बाबा के बच्चे हंसते खेलते सेवा में आगे बढ़ते, एक दूसरे को साथ दे करके साथी बन करके यूनिटी बना करके चलते चले, तो फिर देखेंगे कितनी सेवा में कमाल होती है। बाबा ने कहा बच्ची उड़ती रही, सबको वैसा ही उड़ता पंछी बन करके चारों तरफ ऐसे वाइब्रेशन फैलाने हैं जिससे हर एक अनुभव करे कि ये बाबा का कार्य कितना ऊंच, और हमें भी इसके अंदर सहयोगी बनना है। फिर सबको याद दिया ओम शांति।
तो जैसे कमलेश दीदी को बाबा ने उड़ीसा की सेवा के निमित्त बनाया विशेष रूप से, तो जैसा वो स्थान था ऐसे ही उड़ती कला के द्वारा ही उन्होंने अपनी सेवाएं करते हुए अपनी उस उड़ती कला की स्थिति को ही प्राप्त कर लिया। अभी जिन्होंने जो भी उड़ीसा से भोग लगाने के लिए आए हैं भाई और बहनें, और मधुबन से मिली बहन और गोकुल भाई स्टेज पर आएंगे, भोग का फल लेंगे, जो हमारे मंच पर वरिष्ठ भाई हैं आदरणीय करुणा भाई जी, मृत्युंजय भाई जी और सुलोचना बहन, नतमल भाई, आप भी आप फल लेंगे और गोकुल भाई मिली बहन आ जाएं, और बाकी जो भी उड़ीसा से भोग लगाने के लिए आए हैं वो फिर लाइन में आएंगे। डॉक्टर बनारसी भाई जी आ जाएं, मोहन सिंगल भाई जी,